मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 26 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत और बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं राम बहादुर, आप बहस उत्तर प्रदेश से हैं, सुधांशु शेखर, आप धनबाद झारखंड से हैं, सुनील शर्मा, आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, आयुष पाटले, आप सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, कुंदन किशोर, आपका गांव है बगीचा जिला बांका बिहार से हैं, बलराम दुबे, आपका गांव है जमुन धाना कला जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अभिषेक कुमार, आप बांका बिहार से हैं, शुभम कुमार, आपका गांव है मुनिया जिला गया बिहार से हैं, और सौम्या सिन्हा, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो राम बहादुर, सुधांशु, सुनील, आयुष, कुंदन, बलराम, अभिषेक, शुभम और सौम्या, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे कृषि जगत के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा और खासकर किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो बटने चोल है कि सीधे सीधे कृषि से जुड़ी हुई होती हैं। इससे पहले आगे आइए हम लोग थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं। और इनफैक्ट 3 दिनों के बीच में ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है जिन्हें हम सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकें। एक खबर यूं कह लीजिए कि थोड़े से महत्व की ध्यान रखने के लिहाज से ही सफिशिएंट होगी, और वो ये कि अब ये समझ लीजिए कि ब्रेग्जिट लगभग लगभग कन्फर्म हो गया है। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले ब्रिटेन ने अपने यहां मतदान कराया था कि हमें क्या यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। उसके पक्ष में मतदान हुआ, ब्रिटेन ने फैसला किया कि हां, हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। और जब ब्रिटेन ने यह फैसला किया था, पूरी की पूरी दुनिया इस फैसले को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो मतदान हुआ था और मतदान में जो ब्रेग्जिट का फैसला हुआ, उसके केंद्र में यह था कि ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? उसका कारण यह है कि यूरोप के जो दूसरे देश हैं वो अब ब्रिटेन में रोजगार के लिए आने लगे हैं, और खासकर पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जो सोवियत गुट में थे यानी कि साम्यवादी देश थे, वहां आर्थिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। तो वहां के लोग ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में रोजगार की तलाश में आने लगे। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन के लोगों के रोजगार उनके हाथों में जाने लगे, क्योंकि वो कम रेट पर काम करने को तैयार हैं। तो ब्रिटेन के लोगों के सामने एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि एक आर्थिक संकट की स्थिति आई, और इसी आधार पर ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। और देखिए, जब आप यूरोपियन यूनियन में हैं तो उसका मतलब है कि यूरोप के जितने भी देश यानी कि जो यूनियन के सदस्य देश हैं, उन देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां बड़े आराम से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, ये उनके संविधान में था। तो ब्रिटेन ने फैसला किया कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए संकट खड़ा कर देगा, और उन्होंने अलग होने के पक्ष में मतदान किया। इसको लेकर के पूरी दुनिया में एक तरीके से यूं कह लीजिए कि तहलका मच गया। और दोस्तों, धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया, फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी उसे स्वीकार किया, और अब जो भी उनका अपना संविधान है उसके तहत जो दूसरे सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों ने भी ब्रेग्जिट के अब इस फैसले के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया है, यानी कि उन्होंने भी अब इस बात की अनुमति दे दी कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन समूह से अलग हो सकता है। देखिए, घटना क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? घटना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब 1990-91 के बाद कितनी तेजी से पूरी दुनिया में उदारीकरण का दौर चला है। हम वन मार्केट की बात कर रहे हैं, विश्व बाजार की बात कर रहे हैं, विश्व संस्कृति की बात कर रहे हैं, विश्व ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक है। और यहां हम देख रहे हैं कि जो यूरोपीय समुदाय है, समूह है, वही एक नहीं रह पा रहा है, उसमें से एक देश छिटक करके अलग हो रहा है। तो जब आप 28 देशों के समूह में नहीं रह पा रहे हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 200 देशों का समूह एक रह पाएगा। और इसी क्रम में फिर दूसरी घटना ट्रंप की घट गई, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसमें ट्रंप की जीत के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि ट्रंप ने नारा दिया कि अमेरिका अमेरिकी वासियों के लिए है, अमेरिका अमेरिकी वासियों के लिए, अमेरिकन फर्स्ट। क्योंकि अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी थी, अमेरिका में जो दूसरे देश से आए हुए नागरिक हैं और थे, वो व्यापार पर या रोजगार पर या दूसरे काम धंधों पर धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित करने लगे। प्रभुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूं कह लीजिए कि उनके साथ शेयर करने लगे, तो अमेरिकन्स के रोजगार के अवसर घटने लगे, तो अमेरिकन्स को चिंता हुई, तो उनकी चिंता को ट्रंप ने अपने चुनावी सभाओं में आवाज दी और अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया। इसका मतलब है कि अमेरिका भी ये कह रहा है कि नहीं भैया, हम सबसे पहले अपना देखेंगे। तो अमेरिका अपना देखे, ब्रिटेन ने अपना देखने का फैसला कर लिया है, चीन अपना देखे, जापान अपना देखे, दुनिया के सारे देश अपना अपना देखें, भारत अपना अपना देखे, तो फिर विश्व रहेगा कहां? यानी कि विश्व बाजार की बात मैं कर रहा हूं, विश्व तो रहेगा ही, तो क्या हम फिर से पुराने ही स्थिति में लौट रहे हैं जो हम 1990 से पहले थे? तो क्या अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं रह जाएगी? ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्या होगी, क्या भूमिका रहेगी, वह क्या उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी? तो इस तरह के बहुत से प्रश्न अब दिमाग में आपके आने चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरह के कुछ प्रश्न मेंस में पूछ लिए जाए, मेंस यानी कि सिविल सर्विस का जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें पूछ लिया जाए कि वर्तमान इस तरह के माहौल में, ब्रेग्जिट और अमेरिका अमरीकियों के लिए के माहौल में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि उसकी अब भी जरूरत है, या जो नई विश्व व्यवस्था उभरने की जो आशंकाएं या संभावनाएं बन रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन पर मुझे लगता है कि आप सबको अपने अपने स्तर पर विचार करना चाहिए, ये एक अच्छा होमवर्क ये हो सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब मैं सीधे मुख्य विषय पर बात करता हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, कृषि जगत की मूल समस्या क्या है? देखिए, 1965 तक तो हमारे यहां जो कृषि उत्पादन था वो बहुत कम था, जितनी ज्यादा हमें खाद्यान्न की जरूरत थी हम उतना खाद्यान्न ही पैदा नहीं कर पाते थे। आपको मालूम है कि फिर हमने अमेरिका से अनाज मंगाया, और इसके बाद फिर हमारे यहां ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, फिर अलग तरीके के मिशंस बनाए गए, और नतीजा यह हुआ कि धीरे 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 हमारे यहां उत्पादन बढ़ने लगा, और हर चीज का उत्पादन बढ़ने लगा। अनाज का उत्पादन बढ़ा, दुग्ध का उत्पादन बढ़ा, तिलहन, और अब हम दालों में भी एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि स्वावलंबी हो गए हैं, इन सब का उत्पादन बढ़ने लगा, बहुत से अनाज का तो अब हम निर्यात भी करने लगे हैं, तो उत्पादन हमारा बढ़ने लगा। देखिए, सामान्य सा सिद्धांत क्या होता है? सामान्य सा सिद्धांत यह है कि यदि हमें अपने कृषकों की आय बढ़ानी है तो हम उनके उत्पादन को बढ़ा दें। यानी कि मान लीजिए कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन में वो 50 क्विंटल गेहूं पैदा करता है, ठीक है, तो अगर 50 क्विंटल गेहूं की जगह वो 100 क्विंटल गेहूं करना पैदा करने लगे तो उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। गणित की भाषा में तो सही बात है कि उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। काश कि ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो आज किसानों के सामने कोई संकट नहीं होता। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किसान मार्च कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उधर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उधर किसानों में एक अलग किस्म का रोष है। पंजाब, जो खासकर कृषि उत्पादन के मामले में भारत का एक अग्रणीय राज्य है, वहां देखिए आप किसानों के अपने तरह के अलग संकट हैं, वो गरीबी में रह रहे हैं। तो संकट फिर क्या है? इसका मतलब हुआ स्पष्ट रूप से कि हमने उत्पादन तो बढ़ा दिया है लेकिन इनफैक्ट उससे कृषकों की आय नहीं बढ़ी है। तो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसी जमीन में अगर डबल प्रोडक्शन हो रहा है, तिबल 1.5 गुना उत्पादन हो रहा है, तो उनकी आय में वृद्धि हो जानी चाहिए। दोस्तों, इसका कारण बहुत सिंपल है। मैं आज आपको एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का लेख है जो शेखर गुप्ता जी का लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो लिखते हैं। और इस ज्यादातर शेखर गुप्ता सैद्धांतिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, विचार प्रधान लेख लिखते हैं, लेकिन इसकी खासियत यह है कि उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर इसे लिखा है, बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के लिखा है और मध्य प्रदेश पर बेस्ड है कि मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में गए, उनसे बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर फिर उन्होंने एक लेख लिखा है। मैं पहली बात तो आपको यह कह दूं कि हालांकि है ये मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर लिखा गया लेख, लेकिन आप इसे पूरे देश के किसानों पर लिखे गए लेख के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि समस्याएं सभी राज्यों की लगभग लगभग ऐसी ही हैं। किसानों को आधार बनाने के उनके दो कारण मुझे नजर आते हैं। पहली बात तो यह है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो बटने चढ़े कि किसानों को अब सरकार का चयन करना है, तो सरकार के बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस बीच में मध्य प्रदेश ने किसानों के समृद्धि के लिए या कह लीजिए कि किसानों के असंतोष को कम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई, जिसमें भावांतर योजना बहुत पॉपुलर योजना है, भाव का अंतर यानी कि जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है और जो बाजार भाव उनको मिल रहा है उसका जो अंतर होगा उसे सरकार देगी, इसे कहा भावांतर योजना। बाद में केंद्र सरकार ने भी इसे अपनी योजनाओं में शामिल किया, तो मध्य प्रदेश इस तरह की चीजें करता रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि उत्पादन की गति है या कृषि विकास की जो दर है वो देश में सर्वाधिक रही है। पिछले 10 सालों में काफी तेजी से भारत के राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में मध्य प्रदेश का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, तो मतलब एक जो सर्वोत्कृष्ट राज्य हो सकता है उसका उन्होंने उदाहरण शायद इसलिए भी लिया हो। तो अगर सर्वोत्कृष्ट राज्य की समस्या ये है तो फिर जो राज्य कृषि उत्पादन के इसकी अपेक्षा कम गति से बढ़ रहे हैं तो बट नेचुरल है कि वहां तो समस्या और ज्यादा जटिल होगी ही, इसीलिए आप इसे पूरे देश के संदर्भ में कहा गया मानकर चलें। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र में जो मूल्य का निर्धारण होता है और जो यहां की मेरे क्लास के स्टूडेंट रहे वो इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे, तो मांग और सप्लाई पर डिपेंड करता है, मांग और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हो ये गया है कि चूंकि खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी डिमांड कम हो गई है, डिमांड तो उसकी सीमित है, आबादी जो बढ़ रही है तो जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है वो आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है, तो खाद्यान्न की सप्लाई अधिक हो गई है तो उत्पादन कम हो गया है। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए हैं, वहां खाद्यान्न और दूसरी चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, सरकार अभी उनके आयात को उतना प्रतिबंधित नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियमों के तहत चलना उसकी मजबूरी है, वहां उसके लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी यह है कि जब किसान का उत्पादन बढ़ रहा है तो उसकी लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई है खेती कृषि, तो वो उसके लिए संकट पैदा हो गया है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसान अपने उत्पादन को अपने पास रख नहीं पा रहा है, जब उसका उत्पादन होता है तो बाजार में बेचने के लिए बाध्य है, यानी कि उस समय जो पूर्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका फायदा फिर बाजार उठाता है और उसको फिर सरकार सपोर्ट देने की कोशिश करती है। जब सरकार सपोर्ट देती है तो होता यह है कि सरकार का भी पैसा जा रहा है और किसानों को उतना सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है जितना कि उसे मिलना चाहिए ताकि खेती उसके लिए फायदे का सौदा हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं मित्रों कि किसान जो परिवार है वो नहीं चाहते कि उनकी संतानें खेती का काम करें, रोजाना आंकड़ों के अनुसार 300 लोग खेती को छोड़ रहे हैं, खेती करना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उसका मूल कारण है आर्थिक संकट, आर्थिक भयावह आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो कृषि है अब वह फायदे का लाभ का कार्य नहीं रह गया है। ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं और जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे शेखर गुप्ता जी के तो चीजें और भी स्पष्ट आपको हो जाएंगी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं आलिशा बानो, प्रवीण सिंह रावत कैनेडा से, सन्नी कुमार भागलपुर बिहार से, निधि विश्वकर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से, निदा शाफकत दुष्यंत कुमार, रविंद्र कुमार मैरवाह बिहार से, आलोक कुमार गुप्ता मोतिहारी बिहार से, देवेंद्र सिंह देहरादून उत्तराखंड से, दीपक कुमार फूलेसारा बिहार से, किरण सेत संधि पुणे महाराष्ट्र से और सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।